ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादी दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
लोक वेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव, उसे लोक वेद कहते हैं। सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं। उस लोक वेद के आधार से परमात्मा निराकार बताया हुआ होता है, जिस कारण से परमात्मा को पहचानने में हम अभी तक धोखा खाते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जिस भी ऋषि संत महात्मा ने ज्ञान बताने की चेष्टा की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ज्ञान जो मैं सुना रहा हूं ये वेदों से है, या पवित्र गीता जी से है, या पवित्र पुराणों से है। तो हम यही सोचते रहे कि वेदों में परमात्मा निराकार ही लिखा होगा, क्योंकि जो गुरुजी थे हमारे वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थे। और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, जानता है, पढ़ सकता है, और वो फिर कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उनमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जन साधारण के लिए ये स्वाभाविक है, इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो संत बता रहा है, टीचर बता रहा है, ये सत्य है। तो उन अज्ञानी ऋषि संतों ने केवल लोक वेद सुनाया, वेदों और गीता और पवित्र पुराणों का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उस लोक वेद के आधार से हमें वो बताते रहे परमात्मा निराकार है। जैसे कोई भगवान श्री विष्णु जी के उपासक है, भगवान शिव जी का उपासक है, और उसने साकार मूर्ति बनाई हुई है भगवान विष्णु की, शिव जी की, उसकी पूजा करता है, और फिर उससे कोई पूछता है कि भगवान कैसा है, आप साधना करते हो क्या, आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता समाधि में। तो इस तरह के लोकवेद से पूरा समाज ओत प्रोत था, और साथ में ये ऋषिजन कहा करते कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, तो हमने ये पक्का मान लिया जब वेदों में निराकार लिखा है तो भगवान सचमुच निराकार है। अब जैसे पवित्र हिंदू समाज के गुरुजी पवित्र पुराणों और पवित्र वेदों की ही आड़ लेकर और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की आड़ लेकर ज्ञान सुनाया करते थे, तो हमने यही मान लिया था ये जो बता रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं हमने वेदों गीता और पुराणों को पढ़ा है। तो फिर हमारे अंदर फिर शंका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता कि भगवान के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो कि वो साकार है। एक ने, दो ने, दस ने, बीस ने, पचास ने, लाखों ने, करोड़ों ने, संतों ने, वक्ताओं ने एक के घसी पिटी थ्योरी सुना रखी थी परमात्मा निराकार है, और समाधि में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता साधना समय में। ये तो सिद्धांत था पवित्र हिंदू धर्म का। ऐसे ही पवित्र ईसाई धर्म में वो भी परमात्मा को निराकार मानते, साकार नहीं। किसी ईसाई से पूछा जाए कि परमात्मा कैसा है, साकार है वा निराकार, वो कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर यदि इसमें यही थ्योरी है कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, और पुण्यात्मा हमारे सभी सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य जैसा आकार है, और उसका नाम कबीर है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा प्राप्ति हुई उन्होंने भी परमात्मा को साकार बताया। एक देशीय बताया है, एक स्थान पर सतलोक के अंदर विराजमान है। पुण्यात्माओं ये ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि इस मनुष्य को, इस प्राणी को परमात्मा के वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हो, परमात्मा की वास्तविक स्थिति से ये परिचित हो। इसलिए इसने सभी समाज को भ्रमित कर दिया और लोक वेद के ऊपर आधारित कर दिया। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताते हैं, और आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो मालिक हैं, कुल सृजनहार हैं, और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, और स्वयं ही वो एक नेक नागरिक होते हैं, स्वयं ही एक नेक शिष्य की भूमिका करते हैं, और स्वयं ही एक वास्तविक दास की भूमिका करते हैं। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखनारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये जो भोली आत्मा है, तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इन नकली ऋषियों और गुरुओं के ज्ञान के आधार से वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति है। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुना ज्ञान, जैसे हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण रामकृष्ण की पूजा करते थे, कोई हनुमान जी की पूजा, कोई बाबा श्याम जी की पूजा की तरह, देवी की पूजा, कोई भैरव भूत बैतालों की पूजाएं, कई तीर्थों पे, कई मंदिरों में जाते थे, जिस ज्ञान से आधार से हम ये पूजाएं करते थे वो लोक वेद था, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था, एक जनसाधारण को बता रहे हैं, आप जी और हमारे लिए वो प्रमाण दे रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। सतगुरु, तत्वदर्शी संत सच्चा गुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, पूर्ण संत मिल गए। तो उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक हमें दे दिया। हम उस तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान के आधार से अब इसकी रोशनी में अब हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। हम मनमाना आचरण नहीं कर रहे। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब तुम्हें संत मिल जाएंगे फिर तुम्हारी ये लोक वेद की धारणा छूट जाएगी। जैसे ये दास पहले श्री रामकृष्ण के पुजारी था, विष्णु जी शंकर भगवान के पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था और स्वारपीय का प्रसाद मंगलवार न बैठ दिया करता। तो कोई भी घर में जैसे लाभ होता था तो भगवान राम कृष्ण, विष्णु शिवजी या बाबा श्याम जी हनुमान जी को क्रेडिट देते थे, इन्होंने हमारे ये लाभ दिया। अब जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि ये कुछ भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण और हनुमान जी, श्याम जी आदि जो भी ये देव हैं, ये हमें कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, केवल हमारा किया हुआ कर्म ही दे सकते। वो कौन सा कर्म? पूर्व जन्म का, और इसके अंदर वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रारब्ध में जो लिखा है वही दे सकते, इससे अतिरिक्त वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल एक परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म, जो हमारे भाग्य में भी परिवर्तन कर देता है। अब हमें पता चल गया, इसलिए हम उस लोक वेद के आधार से भटक नहीं सकते। अब आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार है। कबीर परमेश्वर जब आए थे, अपनी महिमा, अपनी वाणी, अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से स्वयं ही आवाज लगा लगा कर सुनाया करते थे और उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। वो पांचवा वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन की वाणी है। उसके अंदर ओवर ऑल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो वेदों और गीता जी में भी नहीं है। उससे आगे का ज्ञान है, वो तो है ही है, उससे आगे का और ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद के विषय में कहा गया है कि उसमें बहुत विस्तार से भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ लिखे हुए, तो उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर अपने समस्या का समाधान करवा, प्रसन्न कर, फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम तत्व का ज्ञान कराएंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से भिन्न कोई और ज्ञान है, अन्यथा गीता जी का ज्ञान तो गीता ज्ञान दाता भगवान बता ही रहा था। उसने कहा है कि उस परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उनके मुख से उच्चरित वाणी में ये ज्ञान बहुत ही विस्तार से लिखे हुआ है। बहुत सी यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में लिखा हुआ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे एक आठवीं कक्षा तक का सिलेबस होता है वो गलत नहीं है, उसे आगे और क्लासेज हैं, उनका सिलेबस पाठ्यक्रम और आगे है, तो ऐसे समझना है। इसी प्रकार पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक, इसमें स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो निराकार कहता है जन्म लेने वाला, कोई न उत्पन्न लेने वाला होने वाला, उसके विषय में वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सुनाएंगे, उनसे सुनो। तो इसे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है लेकिन रॉन्ग नहीं है, अधूरा है लेकिन गलत नहीं कह सकते। अपने सूक्ष्म वेद में दिए हुए ज्ञान में कबीर परमेश्वर ने कहा है, वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरी ही महिमा सुना रहे हैं, लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ज्योति निरंजन ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरन माम अनुशमरन यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गति। मेरा एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, एक ओम अक्षर, एक अक्षर ओम, बस यही एक मंत्र है, इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अपने सतर की उपलब्धि बता रहा है कि मेरे सतर की उपलब्धि तो इस ओम नाम से होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन तो मेरी भक्ति कर, मुझ में मनवाला हो मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में किसी अन्य सचिदानंद घन परमात्मा के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो सचिदानंद घन यानी सत परम अक्षर ब्रह्म परम दिव पुरुष वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन जिस व्यक्ति को तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी होगी और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो समझ लेगा तत्वदर्शी संतों से ज्ञान समझकर, उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते। जरा मरण माने, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। पुण्यात्माओं इस मनुष्य शरीर के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, एक तो बुढ़ापा और एक या मृत्यु, और ये दोनों कंपल्सरी, ये दोनों दुख त्यार धरे अपने सबके साथ होंगे। लेकिन तत्व ज्ञान के आधार से ये पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर ये जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और वहां ऐसा ही आपका, वहां पर ऐसा ही निवास होगा, एक बार वहां आपका जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु कभी नहीं होगी और ना बुढ़ापा होगा। तो वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस काल के लोक की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है, 7वें अध्याय में केवल 30 श्लोक है, 30वें श्लोक में कहा है कि अध्यात्म अधियज और ये अधिभूत आदि के विषय में जानकारी दी है। बस 8वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है प्रथम मंत्र में, अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो परमात्मा कौन है, तत् माने वह, ब्रह्म माने परमात्मा, वो तत्ब्रह्म कौन है, जिसके विषय में जानकारी होने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो भगवान कौन है? किम तत् ब्रह्म? अब गीता ज्ञान दाता ने इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और शक्ति है जो परम शक्ति है, जो पूजा के योग्य है, और उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का छुटकारा हो सकता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, स्थानम माने लोक धाम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसे से देखे गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी हिस्सों के बारे में, सभी भागों के बारे में, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है, इसके विषय में जो संत बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद जीव फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है सर्वशक्तिमान, सर्व सृजनहार, ये पवित्र गीता जी हमें बता रही है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसका ओम मंत्र है और मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी गति भी अनुतम है, अनुतम माने अश्रेष्ठ, व्यर्थ। इसलिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी सनातन परम धाम को, सनातन धाम सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी साधना उसके पाने की विधि ना गीता जी में ना वेदों में। श्रीमद भगवत गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस परमेश्वर के बारे में तत्व ज्ञान देगा, परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान देगा, उससे पूछ। और वो क्या बताएगा? ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल ओम तत् सत यह 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसको 3 तरीके से जाप किया जाता है, त्रिविद, 3 विधि से। ओम तो ब्रह्म का और तत् ये परब्रह्म का मंत्र है और सत ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये दोनों सांकेतिक है, ये वास्तविक मंत्र नहीं है। केवल ओम मंत्र वास्तविक मंत्र है जो ब्रह्म तक की साधना का श्रेष्ठ मंत्र है, जाप है। तत् और सत ये सांकेतिक है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। वो तत्वदर्शी संत परमेश्वर स्वयं आए थे लेकिन उन्होंने इस मंत्र को गुप्त छुपा रखा था कि अभी नहीं बताना, क्लियर नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना, इसको सार्वजनिक नहीं करना था। आज से 600 वर्ष पहले प्रभु ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कही थी, धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, यदि ये सार शब्द, ये वास्तविक मंत्र यदि किसी अज्ञानी संतों ऋषियों के हाथों पड़ गया तो वो नकली भी यही नाम दे रहे होंगे, और पिछली पीढ़ी जो अब वर्तमान का समय जो शिक्षित वर्ग है इसको परमात्मा ने पिछली पीढ़ी की संज्ञा दी है और कहा कि पिछली पीढ़ी जब आओगी तब हम इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, तत्व और सार नाम को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि उस समय शिक्षित पीढ़ी होगी, सदग्रंथों को आंखों देखकर तुरंत मान जाएगी, फिर वो नकली गुरुओं और संतों के बहकावे में नहीं आएगी। वो पुण्यात्मा ऐसे पार करनी है, और यदि नकली संतों को पता लग गया इस वास्तविक मंत्र का तो ये पहले से ही काल प्रेरणा से इन मंत्रों का जाप अपने अनुयायियों को देते हुए मिलेंगे, तो फिर हम भिन्नता नहीं कर पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये मंत्र का जाप ना किसी और पंथ में, ना धन धन सतगुरु में, ना राधा स्वामी वाले दोरे वो भी नहीं देते, ना निरंकारियों के पास, ना इस संसार देश वालों के पास, किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है ये, केवल इस दास के, ना इन कबीर पंथियों के पास जो कबीर पंथी कहलाते हैं और दामाखेड़ा तक और काशी धाम के रहने वाले उनके पास भी, किसी के पास ये मंत्र नहीं है। तो परमात्मा ने इसको गुप्त रखा था और इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को भी गुप्त रखा हुआ था। धर्मदास तो ये लाख दोहाई, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, वेदों में क्या लिखा है, वेदों और गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, और ये लोक वेद के डंडोरा पीटनिये क्या बताते हैं कि अभी इसको छुपा के रखना, और जब तक ये बारह पंथ ना मिट लेंगे तब तक इसको सार्वजनिक नहीं करना। अपुणात्माओं, ये सभी मिट गए, बारह जितने भी बारह के निरे पंथ हो गए, अब तो अभी इनमें जो ज्ञान है, जो ये साधना बताते हैं, उनकी इन्होंने पुस्तकें बनाकर और भगत समाज में थोक के भाव से सेल कर रखी है, और वो हमने खरीद रखी है, उनको पढ़ा इस दास ने और मिलाया अपने परमात्मा के तत्व ज्ञान से, किसी के अंदर भी वो तत्व ज्ञान और ना ही यथार्थ मंत्र पाया, और यही ढंडोरा पीट दिया इस दास ने कि जितने भी पृथ्वी पर आज पंथ और संत हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण दंता से करवा रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते, उनको न तो कोई सुख हो, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो उनको, और न ही उनकी गति हो, इन तीन चीजों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ साधना करने का, यूजलेस यानी कति व्यर्थ। तो पुण्यात्मा और परमात्मा ने आकर स्वयं ही बताया, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरा ही भेद, मेरी ही जानकारी देते हैं, लेकिन जौन से वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं वो सचिदानंद घन की वाणी, पांचवा वेद तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये वेद जानते ना, वो इन वेदों में नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसके विषय में तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत बन के भगवान स्वयं आए थे, उन्होंने आप ही बताया था, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपुण्यात्माओं ये निर्णय करना है कि जो हमने दंत कथा सुन रखी थी परमात्मा निराकार है। अब जैसे सतलोक के विषय में किसी भी अन्य शास्त्र में ज्ञान नहीं, सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोकों के बारे में और किसी भी शास्त्र में ज्ञान नहीं, केवल कबीर साहब की वाणी यानी पांचवें वेद में ज्ञान है, सौक्ष्म वेद में, इस तत्व वेद में ज्ञान है। इस तत्व वेद के ज्ञान को पढ़ लिया एक शिवदयाल जी नामक भक्त ने। एक शिवदयाल नामक लाला जी थे, आगरा की पन्ना गली में रहते थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी में एक करने नो दीदार महल में प्यारा है ये शब्द पढ़ लिया। उसके आधार से बता दिया कि ऊपर सतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक है, अनामी लोक है। उसका भी ज्ञान ये ढंग से नहीं बता पाए, फिर भी उन्होंने सचखंड नामक सतलोक आदि का ज्ञान जनता को बताने की चेष्टा की। वो भी उन्होंने बिल्कुल अड़ंगा ज्ञान बता रखा है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने सतलोक का ठेका ले रखा सचखंड का, कि हम सतलोक पहुंचा देंगे। तो कौन सी साधना देते हैं? वो पांच नाम। वो पांच नाम कौन है? ओंकार, ज्योति निरंजन, रंकार और सोहम और सतनाम। ये पांच नाम राधा स्वामी पंथ वाले देते हैं। ये भी तीन नाम नहीं है, ये भी वो मंत्र नहीं है। इसे सिद्ध है कि पूरा राधा स्वामी पंथ यूजलेस साधना कर रहा है। ऐसे धन धन सतगुरु वाले, सच्चा सौदा सिरसा में, जगमाल वाली वाले, ये तीन नाम देते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं ये। इन्होंने अपने नाम बदल लिए, इन्होंने के नाम रख लिए उपदेश के नाम जाप करने के, सतपुरुष अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। सतपुरुख, सतपुरुख शब्द स्वरूपी राम और अकाल मूर्त, ये तीन नाम जाप को देते हैं। ये कोई मंत्र है? वो तीन नाम का जाप है ओम तत् सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का, कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है, वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को निराकार मानते रहे, लेकिन परमात्मा साकार है। अब आपको हम प्रमाण देंगे, अब आपको सदग्रंथों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले पवित्र वेदों को लेते हैं कि उसमें परमेश्वर के विषय में क्या जानकारी दी है। वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 में ये स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा अपने मुख से अमृत वाणी उच्चारण करता है और वो कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। वो परमात्मा होता है, अपनी महिमा की अपनी वाणी आप ही सुनाता है, जिस कारण से उस परमेश्वर को, उस अमर पुरुष को कवि की उपाधि दे देते हैं। कविताओं के माध्यम से, लोकोक्ति यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता, उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर वाणी द्वारा अपनी साधना बताता है। ये देखिएगा पवित्र ऋग्वेद हिंदी भाष्य मंडल 9 और 10 महर्षि दान सरस्वती, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें हम आते हैं मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 16 से आपको परिचित कराते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 16, इसमें वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे परमात्मन, हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये संस्कृत है ब्रैकेट में जो यहां लिखा है, सब आयुध श्रोत्र भी पुयमान अभर्ष गुहम चारु नाम, इसका अनुवाद किया इस नाम का, हे परमात्मा, परमात्मन अर्थात हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, जो आपका श्रेष्ठ, जो तुम्हारी संज्ञा है, यहां नाम का इन्होंने संज्ञा लिख दिया, नाम ही लिखना चाहिए था, जो आपका श्रेष्ठ नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, अपना वास्तविक नाम हमें बताएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। आगे देखो, अब यहां हम ज्यादा ना पढ़ के यहीं आएंगे। अब 17वें में क्या बताया है, उस परमात्मा का वास्तविक नाम बताया है, शिशु जगानम, शिशु जगानम हर्यतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत मरुतो गणेन, यह है कबीर गिरभी, कबीर ऊपर रह लाग रहे छोटे छोटे आद्य रह ऊपर लगे, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम, ये कवि ही कह लो इसको, कबीर बोलो, संत सोम पवित्र अतेति रेभन, इन्होंने क्या अनुवाद किया है, इससे इसके अनुवाद से आपका विश्वास होगा, फिर ये दास करके दिखाऊंगा। इसमें लिखा कि शिशुम जगानम, इन्होंने संस्कृत लिखने की चेष्टा की है, उस परमात्मा को शिशुम का अर्थ लिखा है इन्होंने, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कामनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं और कवि लोग, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया कवि, इनका ये कबीर, कबीर गिरभी, इसके दो भाग कर दिए, कवि कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, हम इसको लिख देते हैं कबीर वाणी द्वारा, ये कबीर है, हम इसको कबीर, कबीर वाणी द्वारा, इन्होंने कवि कार्स कवि लोग लिख दिया, हम लिखते हैं कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा काव्यना काव्यन्य कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। आगे देखो 17वें में स्पष्ट किया उसका नाम क्या है, वह सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, यह संस्कृत है, तृतीयम धामम देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम यानी तीसरे मुक्ति धाम में है, मैं विराजम उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इसने अनुवाद करता ना अपनी तरफ से घसोड़ दिया, क्योंकि इसे हमने ये सिद्ध करना है कि वो परमात्मा किसी एक स्थान पर विराजमान है, तृतीयम धाम में तीसरे धाम में रहता है। या नीचे आओ अब 20 में क्या लिखा है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गर्जता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में बलिभांति प्रविष्ट होता है। यानी वो परमात्मा कहीं से चलकर आता है फिर इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता है, और जैसे कि एक मरिये माने मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है। अब इन्होंने ज्ञान तो कहेगा था नहीं, खाओ थे दड़ी पीवा था दड़ी पक्का दूध और डंड पे लिया करता है दान, कहेगा वेरा नहीं था इसने, केवल संस्कृत भाषा जाने था। वैसे तो ये नौमा मंडल का अनुवाद इस महर्षि दानंद का करावा नहीं है, लेकिन इसके नाम से ये वेद व्याख्या करते तो इनके अनुयायियों ने यह भी तगड़म्बा यह भी इसके साथ फीत लगा दी नौवें और दसवें मंडल का कि दानंद जी ने अनुवाद किया। वास्तव में इसने अनुवाद नहीं किया इसका, ये देखिएगा एक प्रमाण दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद भाष्यम भाषाकार है महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1-6। महर्षि दानंद ने केवल ऋग्वेद का 1-6 मंडल का अनुवाद किया है, उसके बाद श्रीपाद दामोदर 7-10, यानी 1-6 तो दानंद ने किया, फिर इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद 7-10 मंडल जो है इसके शेष ये अन्य इन आचार्यों ने किए हैं अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सोच के अनुसार। तो कहने का भाव ये है कि इनको ना तो कहने का ज्ञान था और न ही ये भगवान को साकार मानते, वेद में लिखा कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है और वहां से चलकर गतिशील होकर और एक बहुत बड़े समुदाय को जैसे सेनापति होता है यानी गुरु रूप में बहुत से बड़े जन समूह का नेतृत्व करता है, और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता हुआ है यानी परमात्मा उस परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का सतलोक के अंदर एक बहुत तेजोमय शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रहे परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश के सामने, इतना तेज है वहां भगवान का। उस तेज पुंज के शरीर को अन्य वस्त्र धारण करके अन्य ओवर कोट पहन के हल्के सुभर यानी हल्के तेज पुंज का शरीर रूप धारण करके वो परमात्मा यहां प्रकट होता है और वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब देखो ये सी ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद है मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर आपको 86 दिखाते हैं 86। यही ये प्रमाण देता है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के मिलता है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर ना 86 86, इसके 26 मंत्र में क्या कहा है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, नष्ट करता हुआ, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने वास्तविक रूप को हल्का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, इन्होंने इस कबीर शब्द का कवि सर्वज्ञ कर दिया। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता, ना कोई कवि सर्वज्ञ हो सकता। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय यानी श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है वो परमात्मा। यजमानों अप यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके सब रास्ते खोल देता हुआ, खोलता हुआ, उनके विघ्नों को संकटों को नष्ट करता हुआ और उन प्यारी आत्माओं को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को भेंट ही, वह कांतिमान परमात्मा। वैसे हम इसको कबीर कहें तो अच्छा रहे, विद्युत के समान यानी जैसे बिजली एक सेकंड में चमक कर नीचे आ जाती है, ऐसे तीव्र गति से वो चलता है क्रीड़ा करता हुआ और श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वहां से आकर उनको मिलता है। 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतीथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती है, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश का समूह परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ओहो, एक देशीय है ध्रुलोक माने उस सतलोक के, इस ब्रह्मांड के, ध्रुलोक माने ब्रह्मांड के, जैसे तीन लोक हैं, ब्रह्मलोक, ब्रह्म का लोक, 21 ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक, सात संग ब्रह्मांड, उनसे तीसरे पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। इससे हम ये लेना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वह प्रकाश रूप है यानी बहुत तेजो में शरीर युक्त है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, इसके हम आपको तीन श्लोक सुनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका की उत्पत्ति करने वाला रचने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, साकार है, वह पृथ्वी लोक लोकांतर के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त हैं यानी सच्चे भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है वो परमात्मा। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी वो परमात्मा जैसे बिजली गिरा करे ना अपने हिसाब से, ऐसी वो परमात्मा इतनी गति से सतलोक से चल कर आकर अपने भक्तों के पास प्रकट होता है, उनको ज्ञान समझाता है। आगे देखो दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूत नंबर 82 का मंत्र अब 2 देखते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी यहां सच्चा ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, प्राप्त होते हो, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज चलने की गति से हमारे पास आते हो। आप कबीर हैं, कबीर हैं, कवि सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम हम आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। आगे देखो, अब तीसरा मंत्र, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी लोक आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक अर्थ नहीं आपका, आप गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, इन्होंने रट्टा ला रखा था, भगवान निराकार है, सर्वव्यापक है, वो कण कण में विद्वान है, कहीं एक देशीय नहीं है। और वे जिसको एक देशीय बता रहे हैं, मनुष्य सदृश बता रहे हैं, वहां से साकार बता रहे हैं, वहां से चल कर आता है, और श्रेष्ठ भक्तों को यानी विशेष पुण्यात्माओं को जो उनके खास भक्त होते हैं उनको मिलता है। वो परमात्मा किस किस को मिला इस कलयुग में? आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिला बांधोगढ़ में, बांधोगढ़ के रहने वाले को मथुरा में, और आदरणीय मलुकदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहेब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले, आदरणीय घीसा साहेब जी को मिले। वो परमात्मा स्वयं आकर के उनको मिले, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, वहां से सारा व्यवस्था उनको बताई, अपना पूरा परिचय दिया प्रभु ने। फिर उन प्यारी आत्माओं ने, उन पुण्य आत्माओं ने उस परमेश्वर का एफिडेविट दिया अपनी अमृतवाणी में, ये गवाही दी है कि वो परमात्मा साकार है, सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। और ये वही परमात्मा है जो बनारस में काशी में आए थे। आम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुल्हा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, और वो राजा की तरह मनुष्य की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है। वो अपने खास भक्तों को आकर मिलता है, अपना ज्ञान पुद को समझाता है, जो दृढ़ भक्त है श्रेष्ठ आत्मा, फिर वो पुण्यात्मा औरों को बताते हैं और ढोल के डंके पर कहते हैं कि परमात्मा साकार है, वो कबीर है, सह शरीर है, वो सतलोक में रहता है। अब पहले हम इन सदग्रंथों को क्लियर करते हैं, और उसके बाद उन आंखों देखे महापुरुषों के विषय में जानकारी देंगे कि उन्होंने क्या बताया और सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनका एक जैसा मेल है। अब जैसे विशेषकर इस कलयुग में वर्तमान में एक महर्षि पाक रहा था, महर्षि दानंद, और उसने वेदों के आधार से इतना ज्ञान फैला दिया, उनको महर्षि दानंद को सभी वेदों का ज्ञाता लोक वेद से मानते थे, यथार्थ उनके बारे में जानकारी नहीं थी, लोक वेद था, सुनी सुनाई कथाएं थी। तो उन्होंने क्या बताया है भगवान को कि परमात्मा निराकार है, और ये महर्षि दानंद जो है वेदों को सत्य मानता है कि वेदों में जो लिखा वो बिल्कुल सत्य है, और यहां तक लिखा अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक अनुभव की पुस्तक में कि जहां पर वेदों के विरुद्ध किसी की भी वाणी हो, किसी का भी ज्ञान हो, हमें स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। इसे सिद्ध है कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, वो सत्य है, और स्वयं वो परमात्मा को निराकार कहते थे जबकि वेद साकार बताते। ऐसे ही इन सभी ऋषि महर्षि जो पहले भी हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, इन सब की एक ही थ्योरी थी, उसी थ्योरी को आधार मानकर महर्षि दानंद ने संस्कृत बोल बाल कर दुनिया को अपना पीछा लगा लिया। ज्ञान इसको कैख है भी नहीं था भक्ति के बारे में।